विद्यायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण पृष्ठभूमि। कैलिफोर्निया के लगभग 5 में से एक विद्यार्थी अंग्रेजी सीखने वाला है। 2015-16 में कैलिफोर्निया की पब्लिक स्कूलों के प्राथमिक और उच्चतर ग्रेडों के लगभग 2.7 मिलियन विद्यार्थियों ने घर में अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरी भाषा बोली। स्कूलों ने इन लगभग 1.4 मिलियन विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया, जिसका अर्थ था कि वे अभी तक अंग्रेजी में धारा प्रवाह नहीं थे। अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थी कैलिफोर्निया के सभी पब्लिक स्कूलों के विद्यार्थियों का 22% है। कैलिफोर्निया में अंग्रेजी सीखने वाले 80% से अधिक विद्यार्थी मूल रूप स्पेनिश भाषी हैं। स्कूलों को अंग्रेजी सीखने में सभी विद्यार्थियों की सहायता आवश्यक करनी चाहिए। पब्लिक स्कूलों में से कानूनी अपेक्षा है कि वे अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान जैसे अन्य विदेश पढ़ाने के अलावा अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सिखाएं। पूरे देश में स्कूलों में अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों को या तो केवल अंग्रेजी या द्विभाषी कार्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। केवल अंग्रेजी कार्यक्रमों में विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोलने वाले अध्यापकों से अंग्रेजी और अन्य विषय पढ़ते हैं। द्विभाषी कार्यक्रमों में विद्यार्थी अंग्रेजी और अपनी मूल भाषा दोनों भाषाएं बोलने वाले अध्यापकों से अपने विषय सीखते हैं। बहुत से द्विभाषी कार्यक्रम 3 और 6 वर्ष के बीच चलाए जाने के लिए तैयार किए गए हैं, जिसके बाद विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में सिखाई जाने वाली कक्षाओं में जाते हैं। कुछ द्विभाषी कार्यक्रम अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों को धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखने के बाद भी कम से कम दिन के कुछ हिस्से तक उनकी मूल भाषा में पढ़ाना जारी रखते हैं। कैलिफोर्निया के स्कूलों से अपेक्षा है कि वे अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों को अधिकतर अंग्रेजी में ही पढ़ाएं। अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने संबंधी कुछ चिंताओं के जवाब में कैलिफोर्निया के मतदाताओं ने 1998 में प्रस्ताव 227 पारित किया। प्रस्ताव 227 की आमतौर पर अपेक्षा है कि अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी में पढ़ाया जाए और ये द्विभाषी कार्यक्रमों के उपयोग पर पाबंदी लगाता है। प्रस्ताव 227 की आमतौर पर अपेक्षा है कि पब्लिक स्कूल अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों को अन्य केवल अंग्रेजी कक्षाओं में भेजने से पहले 1 वर्ष का विशेष गहन अंग्रेजी का शिक्षण प्रदान करें। प्रस्ताव 227 आज तक लागू है। कुछ खास दशाओं में स्कूल द्विभाषी कार्यक्रम चला सकते हैं। प्रस्ताव 227 के अंतर्गत अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों के माता पिताओं को स्कूल आना होगा और इस स्थिति में एक छूट पर हस्ताक्षर करने होंगे यदि वे चाहते हैं कि द्विभाषी शिक्षण के लिए उनके बच्चों पर विचार किया जाए। स्कूल निम्नलिखित 3 शर्तों में किसी शर्त को पूरा करने वाले विद्यार्थियों के लिए इन छूटों की मंजूरी दे सकते हैं। 1, अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थी जो कम से कम 30 दिन तक केवल अंग्रेजी कक्षा में उपस्थित रहे हों तथा जिनके अध्यापक प्रधानाचार्य तथा जिला अधीक्षक सभी सहमत हों कि वे द्विभाषी कार्यक्रम में बेहतर रूप से सीखेंगे। 2, वे विद्यार्थी जो कम से कम 10 वर्ष की आयु के हों। या 3, वे विद्यार्थी जो पहले से ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हों। यदि किसी ग्रेड में 20 या इससे अधिक विद्यार्थियों को छूट की मंजूरी मिल जाती है तो उनके स्कूल को द्विभाषी कक्षा चलानी होगी या विद्यार्थियों को ऐसी किसी कक्षा वाले स्कूल में स्थानांतरित होने की अनुमति देनी होगी। 1998 से अब तक कुछ ही स्कूलों ने द्विभाषी कार्यक्रम चलाए हैं। प्रस्ताव 227 के बनाए जाने से पिछले वर्ष में कैलिफोर्निया के लगभग 30% अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों को द्विभाषी कार्यक्रमों में पढ़ाया गया। 10 वर्ष बाद कैलिफोर्निया के लगभग 5% अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों को द्विभाषी कार्यक्रमों में पढ़ाया गया। स्कूली जिलों, स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और काउंटी ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन को अपने समुदायों को वार्षिक आयोजना प्रक्रिया में शामिल करना होगा। स्कूली जिलों और काउंटी शिक्षा कार्यालयों से राज्य की अपेक्षा है कि वे वार्षिक योजनाएं प्रकाशित करें जिनमें उन सेवाओं का वर्णन किया गया हो जो वे अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों सहित विद्यार्थियों के कुछ खास समूहों को उपलब्ध कराएंगे। ये इन योजनाओं को अंगीकार करने से पहले स्कूल के अधिकारियों को माता पिताओं और समुदाय के सदस्यों की बात करनी होगी कि वे किस प्रकार के कार्यक्रमों को अपने स्कूलों द्वारा चलाया जाना पसंद करेंगे। प्रस्ताव ये विधेयक प्रस्ताव 227 के मुख्य प्रावधानों को रद्द करता है तथा नीचे दर्शाए अनुसार अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के संबंध में कुछ नए प्रावधान जोड़ता है। द्विभाषी कार्यक्रमों पर लगे प्रतिबंधों को हटाता है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत स्कूलों से अब अपेक्षित नहीं होगी कि वे अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों को केवल अंग्रेजी कार्यक्रमों में पढ़ाएं। इसके बजाय स्कूल अपने अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों को द्विभाषी कार्यक्रमों सहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के प्रयोग से पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों के माता पिताओं के लिए आगे से अपने बच्चों को द्विभाषी कार्यक्रमों में दाखिल कराने से पहले छूटों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं रहेगा। जिलों से अपेक्षा है कि वे कुछ अभी भावकीय मांगों के प्रति प्रतिक्रिया करें। जबकि स्कूल आमतौर पर इतनी इच्छा के अनुसार अपने अंग्रेजी शिक्षार्थी कार्यक्रम बना सकते हैं, फिर भी उन्हें माता पिता द्वारा अनुरोध किए जाने पर अंग्रेजी के शिक्षार्थियों को गहन अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करनी होगी। इसके अलावा स्कूली जिलों से अपेक्षित होगा कि वे प्रयास माता पिताओं द्वारा अनुरोध किए जाने पर कोई विशेष अंग्रेजी शिक्षार्थी कार्यक्रम चलाएं। विशेष रूप से यदि किसी स्कूल में या तो किसी एक ग्रेड में विद्यार्थियों के बीस या इससे अधिक माता पिता या दो कुल मिलाकर 30 या इससे अधिक माता पिता किसी विशेष प्रकार के अंग्रेजी शिक्षार्थी कार्यक्रम का अनुरोध करते हैं, तो स्कूल को संभव सीमा तक उस कार्यक्रम को चलाना होगा। जिलों से अपेक्षा है कि वे अपने अंग्रेजी शिक्षार्थी कार्यक्रमों के बारे में समुदाय के सदस्यों से बात करें। इस प्रस्ताव की अपेक्षा है कि स्कूली जिले और काउंटी शिक्षा कार्यालय माता पिताओं और समुदाय के अन्य सदस्यों से भी पूछें कि अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए केवल अंग्रेजी या द्विभाषी कार्यक्रम के प्रयोग से स्कूली जिले और काउंटी शिक्षा कार्यालय अपनी नियमित वार्षिक योजना प्रक्रिया के भाग के रूप में इस फीडबैक का अनुरोध करेंगे। कुछ जिले संबद्ध अपनी वार्षिक योजना प्रक्रिया में इन मुद्दों पर केवल पहले ही चर्चा करते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव इन मुद्दों पर प्रार्थनीय फीडबैक देता है जो सभी जिलों की अपेक्षा है। राजस्व संबंधी प्रभाव। इस विधेयक का राज्य सरकार पर कोई उल्लेखनीय राजस्व संबंधी प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी इसके प्रमाण स्वरूप संबद्ध कुछ स्कूली जिलों द्वारा अंग्रेजी शिक्षार्थियों को पढ़ाने के तरीके में बदलाव आएगा। इन बदलावों का स्थानीय कीमतों पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। हम स्कूलों पर इस विधेयक के कार्यक्रम और राजस्व संबंधी प्रभावों पर नीचे चर्चा करेंगे। अंग्रेजी सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम संबंधी महत्वपूर्ण प्रभाव। हालांकि इस विधेयक की आमतौर पर अपेक्षा नहीं होती है कि स्कूल जिले अंग्रेजी सीखने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के अपने तरीकों को बदलें। ये सभी जिलों के लिए द्विभाषी कार्यक्रम आरंभ करना या विस्तार करना आसान बनाता है। इस विधेयक का सटीक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि माता पिता और स्कूल इसके प्रति कैसा प्रतिक्रिया करते हैं। समय के साथ साथ द्विभाषी कार्यक्रम अंग्रेजी सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों को द्विभाषी कार्यक्रम में पढ़ाए जाने के साथ अधिक सामान्य बन सकते हैं, जिन्हें अन्यथा केवल अंग्रेजी कार्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। इन स्कूली जिलों और विद्यार्थियों के लिए इस विधेयक के कार्यक्रम संबंधी प्रभाव महत्वपूर्ण होंगे। स्कूलों के चालू और एक बार के खर्चों पर मामूली प्रभाव। इस विधेयक के कारण बनाए गए या बढ़ाए गए द्विभाषी कार्यक्रम आवश्यक रूप से केवल अंग्रेजी कार्यक्रमों की तुलना के में कुल मिलाकर अधिक या कम महंगे नहीं होंगे, क्योंकि दोनों प्रकार के कार्यक्रमों के वार्षिक खर्च अधिकतर कक्षा के आकार अध्यापन के वेतन जैसे घटकों पर निर्भर करते हैं। द्विभाषी कार्यक्रम बनाने वाले किसी स्कूल को नया पाठ्यक्रम तैयार करने, नई शिक्षा सामग्रियाँ खरीदने, अध्यापकों को नए पाठ्यक्रम और सामग्रियों का प्रशिक्षण देने तथा माता पिताओं को कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए कुछ एक बार के खर्च उठाने होंगे। फिर भी ये खर्च निश्चित रूप से अतिरिक्त खर्च नहीं होंगे, क्योंकि स्कूल नियमित रूप से पाठ्यक्रम में संशोधन करते हैं, नई सामग्रियाँ खरीदते हैं, अध्यापकों को प्रशिक्षण देते हैं तथा माता पिताओं को स्कूल के ज़रूरी मुद्दों को जानकारी देते हैं। इस विधेयक का समर्थन या विरोध करने के लिए प्राथमिक रूप से गठित समितियों की सूची के लिए https://www.sos.ca.gov/measure-contributions पर जाएं। समिति के शीर्ष 10 योगदानकर्ता देखने के लिए http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors /nov-16-gen-v2.html पर जाएं।